ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा इस समय आकर हमारा सुप्रीम टीचर बनते हैं। सुप्रीम बाप तो है ही, लेकिन इस समय आकर के सुप्रीम टीचर बनते हैं। तो सुप्रीम टीचर, ऊंचे से ऊंचा टीचर, हमें पढ़ाई भी ऊंचे से ऊंची पढ़ाते हैं, लक्ष्य भी बहुत ऊंचे से ऊंचा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये इतनी सरल पढ़ाई है जो कोई भी समझ सकता है। इतनी ऊंची पढ़ाई होते हुए भी बहुत सरल है। शुरू में तो बाबा चित्रों पर समझाते थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा कैसे निराधार होते गए। बाबा ने आज मुरली में कहा है चित्रों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज्ञान तो मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, अब इशारे से भी तुम समझा सकते हो, वाचा में भी आने की दरकार नहीं है इशारे से। हाँ, वैसे जो बहरे होते हैं उनको तो ऐसे इशारों से ही समझाया जाता है ना, तो इशारों से भी समझाया जा सकता है ये, इसलिए चित्रों की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं तो बाबा चित्रों पर कितना जोर देते हैं, लेकिन आज बाबा ने उसका आधार भी हमारे से हटाया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, घर जाना है। तो घर जाना है तो क्या चित्र थोड़ी चाहिए, चित्रों के आधार से थोड़ी घर जाएंगे। ये तो अंदर की समझ की बात है, पावन बनना है, घर जाना है, देवता बनना है, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। थियोरेटिकल बातें केवल होती है तो उसमें चित्र वित्र बहुत कुछ दिखाते हैं। तो आज बाबा ने इन सब स्थूल आधारों से भी निराधार बना दिया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा हमें इतना ऊंचा ले जाते हैं, जो सब स्थूल आधार भी बाबा हमसे छुड़वा देते हैं। बस एक ही लक्ष्य है, पावन बनकर घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बस सब कुछ यहाँ ही भूल जाना है, यहाँ का कुछ भी साथ नहीं चलेगा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 1/7/2025 है और ये जुलाई का महीना दीदी का महीना है, बड़ी दीदी का महीना है। तो दीदी की भी बहुत विशेषताएं थी, अब उसका वो लिखत तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत शिक्षाएं दीदी से भी हमने ली है। तो आज की मुरली है, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए सार है तो क्या ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, बस यही बाबा हमें कहते हैं, याद करो और कराओ। पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस पढ़ाई की, इस पढ़ाई में कमाई भी है साथ साथ, क्योंकि जब हम पढ़ते जाते हैं तो साथ साथ पढ़ाते भी जाते हैं, तो कमाई होती जाती है। तो पढ़ाई भी है, कमाई भी है, लड़ाई भी है, सफाई भी है, ये सब बातें हैं, लेकिन कितना सहज रूप से सब कर लेते हैं। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं, तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? इतना डिटेल की तो जरूरत ही नहीं है, बस पिछाड़ी में तो तंत ही रह जाएगा, सार ही रह जाएगा। तो पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, तो बाकी सब कुछ भूल जाना है, अब जाते हैं वापस घर। फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। बस सार ही यही सार है सारे ज्ञान का, वो बुद्धि में रहेगा। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, हाँ फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने, फिर ब्राह्मण वंशी बने। तो बाबा कहते हैं इसमें चित्रों की दरकार ही नहीं है, ये तो केवल समझ की बात है, चित्र इसमें नहीं चाहिए, इसमें चित्रों की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, सब आत्म अभिमानी होकर बैठे है ना। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र तो है ना, अब इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, सृष्टि पर उतरे तो सबसे पहले देवी देवता धर्म में आए। ये ज्ञान बुद्धि में है, अब इसमें चित्र की तो कोई दरकार ही नहीं है, ज्ञान है बुद्धि में, चित्र क्या करेंगे इसके लिए। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है, अंत में याद सिर्फ यही रहेगा, क्या रहेगा, कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है, बस अभी पार्ट बजाया, अब घर जा रहे हैं, बस यही अंत में बुद्धि में रहेगा। ये भूलना नहीं चाहिए हाँ कि हमारा हाँ घर जाना है, फिर पार्ट बजाने आना है, बस ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं, इसमें चित्रों की तो बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें, चित्र ज्ञान मार्ग की चीज़ें नहीं है, ये भक्ति मार्ग में जो सामग्री है ना, ये सब चित्र है, जो भी मूर्तियाँ हैं, शास्त्र है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान मार्ग में कोई ये सामग्री नहीं है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें, ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्र क्या करेंगे, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया जाता है, करेक्शन तो करते हैं, यहाँ ज्ञान में भी जो चित्र है उसमें करेक्शन करते रहते हैं। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है, बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, अब हम कहते शिव है, वो कहते कृष्ण है, तो जब समझ मिल गई तो चित्र की तो कोई दरकार ही नहीं है। तो ये भी बुद्धि से समझने की बात है, बुद्धि में ये नॉलेज रहती है हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है, पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। पतित बन गए, अब पावन बनना है, पवित्र बन के घर जाना है, फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, ये बाबा की बुद्धि में है। वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, तो चित्रों की तो दरकार ही नहीं है। बस समझ मिल गई, चित्रों की तो दरकार ही नहीं है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं, हमें तो समझ मिल गई है ना, तो हमें तो चित्रों की दरकार नहीं है, पर मनुष्यों को समझाने के लिए चित्रों की दरकार है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाई है। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ क्या है, बाप कहते हैं मन मना भाव, बस ज्ञान मार्ग में यही है मन मना भाव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा तो सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। इतना सहज है, वैसे चित्रों के बिना भी सहज समझ सकेंगे, दरकार तो नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहाँ बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब ये समझानी है, पर चित्रों की ज़रूरत नहीं है, ये चित्रों पर समझाते हैं, पर पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान ही रहेगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे तो सीढ़ी पर भी समझाया जाता है, तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते, तो तुमको नहीं चाहिए चित्र, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी समझ है, पर नयों को समझाने के लिए ये चित्र चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती होती। क्रिश्चियंस का दिखाते हैं 2000 वर्ष, तो 2000 वर्ष में ही इतनी उनकी जनसंख्या हो गई है, तो लाखों वर्ष अगर होता ये चक्र तो कितनी जनसंख्या हो जाती। तो क्रिश्चियंस का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े होते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, तो रचना की वृद्धि भी जल्दी जल्दी होती है, पर योग बल की रचना है तो वृद्धि इतनी जल्दी नहीं होती है। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी कितनी होती, अनगिनत होती, अनगिनत। अभी फिर भी गिनती में है, चलो कहेंगे 800 करोड़ है दुनिया की आबादी, तो बाबा कहते हैं अगर लाखों वर्ष होता ये साइकिल तो कितनी अनगिनत संख्या होती। क्रिश्चियंस की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, 2000 साल में क्रिश्चियंस कितने हुए हैं, तो आदमशुमारी कितनी है, तो ये जन तो ये संख्या तो निकालते हैं ना हिसाब। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियंस बहुत बन गए हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन मिशनरीज इतनी एक्टिव थी, सारे विश्व में इनका राज्य था ना ब्रिटिशर्स का, तो जहाँ भी गए क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव थी, जो भी थे सबको क्रिश्चियन बनाते गए, क्रिश्चियन बनाते गए। तो हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियंस बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। तो विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, सिर्फ नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तो तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होनी चाहिए ना। नर्क से स्वर्ग में जा रहे हैं तो बाबा कहते अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। सतयुग में कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं जिसके लिए भाई कोई अप्राप्त वस्तु है उसके लिए पुरुषार्थ करे। सब कुछ प्राप्त है। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी देखो नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल वो बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो कितनी मशीनें चाहिए, बहुत मशीनें चाहिए। यहाँ वहाँ से ये मशीनें कैसे लाते हैं, तो बहुत कुछ कारोबार है ना। मशीनें ही मशीनें चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये मशीन चाहिए, ये चाहिए। अब वहाँ तो सब सुख मौजूद होंगे सतयुग में। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते हैं। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। तो बीमारियों की दवाई के लिए ये सारी मशीनें कितनी चाहिए अस्पतालों में। तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ये भी टाइम पास करने के लिए है। रमत गमत सूक्ष्म वतन की, अभी तो फिर भी बाबा ज्ञान युक्त बातें हमें बताते। ध्यान में जाती है बहने तो राज ही बताती है, पर पहले तो ये सब राज भी कुछ नहीं थे, रमत गमत ही थी। बाबा स्वर्ग में भेजते थे तो वहाँ राशि करते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए ये खेलपाल है साक्षात्कार। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी तो बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर रमत गमत नहीं होगी, बस घर जाना है, घर जाना है, अब हम जाते हैं घर। हाँ, बड़ी दीदी का तो यही स्लोगन था ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कोई भी उनके पास जाते एडमिनिस्ट्रेशन में तो कई बातें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो दीदी को जाके सुनाते थे समस्याएं। तो दीदी तो सुनते हुए क्या कहती, छोड़ो सब बातें, छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इतना वैराग्य दिलाती थी दीदी। तो बाबा कहते हैं हाँ बस तुमको ये कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, अब इसमें चित्रों आदि की तो दरकार ही नहीं है। बुद्धि में बैठ गया है सारा ज्ञान, तो चित्र क्या करेंगे। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए बस जो पाठ पढ़े वो खलास, फिर से उनको दोबारा ये सब पढ़ने की दरकार नहीं। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार ही नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। अब चतुर्भुज विष्णु का चित्र लेते हैं या मूर्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर ये चार भुजा क्यों है, शंख चक्र गदा पद्म का क्या अर्थ है? बाबा कहते वो तो मनुष्य समझते नहीं हैं। तो बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। कौन थे लक्ष्मी नारायण, कब आए थे, कब उनका राज्य था? ताज तो दिखाते हैं तो राज्य किया होगा ना, तो कब था? बाबा कहते कुछ नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ हैं, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। ये ब्रह्मा साकार ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये तो यहाँ हैं और ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ब्रह्मा बाबा को पूर्ण वैराग्य था सब कुछ बातों से। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, चलो अपने घर, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, कितना गंदा है, हाँ बात मत पूछो कितना गंदा है। क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। काशी करवट खाते थे ना, तो मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना। अब सतो प्रधान बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे, घर जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे, अब बुद्धि में समझ आ गई है। अब इसमें तो चित्र न हो तो भी अच्छा है, बाबा कहते और ही अच्छा चित्र न हो तो। हाँ, चित्र को समझाने की बजाय ओरली ऐसे समझाएं तो और ही अच्छा। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का भी राज समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु हाँ ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा न खेलपाल है, तो इसमें न योग है न ज्ञान है, ये सिर्फ एक रसम है कि भोग लगा कर आना है। इसीलिए बाबा संदेशी को कहते थे जाओ जल्दी, वापस आओ जल्दी, गो सुन कम सुन। खास हमारी संतरी दादी थी, वो तो बहुत स्पेशल संदेशी थी और बाबा की विशेष संदेशी थी। जहाँ भी बाबा जाते थे संतरी दादी और भाव विश्व किशोर, ये लौकिक में तो युगल थे लेकिन बिल्कुल ऐसे न्यारे प्यारे थे, और वो संदेशी भी थी। तो बाबा को कुछ भी अव्यक्त बाप दादा से पूछना होता था तो संदेशी को कहते थे, संतरी दादी को, बच्ची जाओ, हाँ वतन में जाओ, बाबा से ये बात पूछ के आओ, पर जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो बाबा दृष्टि देते थे और एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी से भी कम, बस तुरंत चली गई और एक मिनट में वापस भी आ जाती थी। बस संदेश जो बाबा ने दिया उसका जो जवाब बाबा ने दिया वो लेकर आती थी, इतना सहज। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, ये सिर्फ एक रसम है। भोग भी लगाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है भोग लगाना, क्योंकि हाँ जिस जो हमें खिलाते हैं हमारा फर्ज बनता है उनको स्वीकार कराना। गीता में भी आता है भगवान हमें खिलाते हैं, और अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो ये भी एक चोरी हो गई। जो हमें खिलाता है हम उनको थैंक्स भी नहीं देते हैं, तो ये तो चोरी हो गई ना, ऐसे ही ले लिया, ऐसे ही खा लिया। तो बाबा कहते हैं ये एक रसम है, तो समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं। तब उस समय तो बहुत कुछ होता था ना, ब्राह्मण के तन में वो आत्मा आती थी जो शरीर छोड़ चुकी है, तो ब्राह्मण के तन में आती थी और फिर उनसे पूछते थे आप कैसे हो, कहाँ हो, तो वो आत्मा रोती थी, कई बार रोती भी थी। हमारे यहाँ की बात नहीं है, परंतु बाहर भी ऐसे होता था, यहाँ भी रोती थी कि बाबा ने हमें इतना समझाया, इतना बताया, हाँ परंतु मैंने नहीं सुना, नहीं समझा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो रोती थी। तो बाबा भी कहते हैं समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोती है, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। तो ये कहकर वो आत्मा जैसे रोती थी। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे पुरुषार्थ में लग जाए, लग पड़े, गफलत न करे। बच्चे सदा ये अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। अगर बुद्धि में ये स्पष्ट है कि हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। नट शेल में माना सार रूप में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। वो बात पूरी हुई, क्या क्या खुशी होनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं, है खुशी, हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही हैं, जिनको बहुत धन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है, बहुत धन है, ज़रूर दान पुण्य किया होगा पूर्व जन्म में तो इसलिए अभी बहुत धन है तो सुख है, तो अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो हाँ, तो क्या मिलता है, अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो, अच्छे कर्मों का ये फल तुम 21 जन्मों के लिए सुख पाते हो। वो तो एक जन्म के लिए समझते हैं हम स्वर्ग में, बाप कहते हैं वो है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ, ये पुण्य कर्म करते जाओ, सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, हाँ स्वर्ग को भी याद करो, वहाँ राजाई कैसे पाएंगे, बाबा कहते वो भी याद करो और मुझे भी याद करो। राजाई थी अभी नहीं है, भारत की बात है, बाकी तो है, बाकी क्या है, भारत की बात है। भारत में राजाई थी, डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, अभी कोई ताज नहीं है, ये भारत की कहानी है। तो बाबा कहते हैं भारत की बात है, बाकी तो है बाई प्लॉट्स, और धर्म वाले सब बाई प्लॉट्स है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे घर, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, हम नई दुनिया में आएंगे अभी घर जाएंगे, हाँ बाबा कहते चित्रों की दरकार ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं तो समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनको करेक्ट कर फिर बाबा कहते हैं बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, अगर ये चित्र नहीं बनाएंगे तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए। अभी शंकर का चित्र कैसा बनाया देखो, जटाएँ हैं और फिर उसमें से गंगा निकली, फिर चांद दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं पर चित्र में फिर उसी रूप से थोड़ा करेक्ट करके बनाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाप इसलिए बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताते जाओ, बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं है, भारत की बात है, बाकी तो है बाई प्लॉट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए, तो बाबा कहते हैं समझाया जाता है, बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में ये भी ड्रामा में नोंद है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बाबा कहते हैं तो सब ड्रामा में नोंद, कोई कुछ करता थोड़ी है। अब विष्णु सूक्ष्म वतन से बैठ के थोड़ी पालना करेगा, या ब्रह्मा सूक्ष्म वतन से बैठ के स्थापना करेगा, या शंकर सूक्ष्म वतन से बैठ विनाश करेगा, बाबा कहते हैं सब ड्रामा में नोंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंस दान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं, भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स नहीं बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। अब कहेंगे ये देश वाले सब समुद्र में डाले अपने बॉम्ब्स, अब वो डाल दे पर दूसरे न डाले, तो पहला देश वाला कहेगा हम क्यों डाले फिर, तुम लोग तो डालते नहीं हो, फिर हम क्यों डाले, हमारे ऊपर फिर आक्रमण करोगे, इसीलिए बॉम्ब्स कोई भी ख़त्म नहीं कर रहा है और यूज़ कर रहे हैं पर ना उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं तो जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, वो रखे हैं तो ज़रूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है, अवश्यम भावी, हाँ ये भावी बनी हुई है कि सृष्टि का विनाश तो होना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है, विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, सबका कल्याणकारी बनो, बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे क्या देते हैं श्रीमत, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर दो, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए। धनी यानी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, हाँ सफली उनकी हो जो करे धनी के नाम। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी कौन है? शिव बाबा। हाँ, धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, ईश्वर अर्थ, ईश्वर अर्पणम करते थे ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट, वहाँ तो इनडायरेक्ट करते थे। अभी धनी डायरेक्ट आया है और बाबा कहते हैं जो मैं स्थापना कर रहा हूँ उसमें मददगार बनो। तो अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। खोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स सब जगह बनते जा रहे हैं, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य तुम पा लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग जो द्वापर युग से चला उसमें सब कुछ खत्म नहीं होते हैं, अभी खत्म होना है। अंत का जब समय आया है तब ये सब खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। अभी तुम खर्चो तो बाबा कहते हैं तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं बाबा, कितना अच्छा समझाते हैं, फिर भी जिनकी तकदीर में है वो तो खर्च करते रहते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ कोई ऐसे दान पेटी नहीं है कि ऐसे दिखावा करो कि हम डाल रहे हैं, यहाँ सब गुप्त चलता ही रहता है, लेकिन हिसाब तो पूरा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कितना अच्छा समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। इनका यानी बाबा का तो पाठ ही ऐसा था। बाबा ने तो सब कुछ बहनों माताओं के आगे स्वाह किया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। लेकिन अभी तो बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि सब कुछ दे दो और हाथ खाली हो जाओ, रखो अपने पास, बाकी बाबा की सेवा में लगाओ और लौकिक को भी संभालो, नौकरी धंधा भी करो, बच्चों को भी संभालो, वो भी सब करना, हिसाब रखो। तो बाबा कहते अपना घर बार भी संभालना है। इनका तो पाठ ही ऐसा था जो सब कुछ स्वाहा किया माताओं बहनों के आगे। एकदम जोर से नशा चढ़ गया बाबा को, जोर से एकदम नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं तो फिर ये गधाई क्या करेंगे। स्वर्ग का साक्षात्कार कराया बाबा को कि ये तुमको स्थापन करना है, विनाश का साक्षात्कार भी कराया, सब खत्म होने वाला है और राजाई तुम ले सकते हो। तो बाबा कहते इतना जोर से नशा चढ़ गया जो फिर बाबा बादशाही देते हैं फिर गधाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो। हाँ, तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया ब्रह्मा बाबा को। ओहो, राजाई मिलती है, अल्लाह को अल्लाह मिला तो बेभागीदार को भी राजाई दे दी, है ना। बाबा नशा तो चढ़ा हुआ था, बाबा बनारस से कलकत्ता गया कि अभी ये बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, और उसी समय घर से तार आई, तो उस समय टेलीग्राम चलती थी, तो तार आई कि पोता पैदा हुआ है, और पोतरा पैदा होना माना बहुत बड़ी बात। तो बाबा तो बहुत बड़ी पार्टी देते थे उस समय, तो सोचा कि पोतरा पैदा हुआ है, छठी करनी है, बहुत बड़ी पार्टी देनी है तो जल्दी आ जावे, तो टेलीग्राम किया कि जल्दी आ जाओ। और यहाँ तो बाबा बिजनेस वाइंड अप कर रहे थे, और बिजनेस वाइंड अप किया और जो दुकान था वो पार्टनर को दे दिया और बाकी जो अपना हिस्सा था वो थोड़ा बहुत जो लिया वो लिया। और जब तार आई कि आप आ जाओ, तो तार का जवाब तार में दिया। क्या तार में दिया? अल्लाह को अल्लाह मिला, ब्रह्मा बाबा अल्लाह हो गया, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। जो बे माना उनका पार्टनर, दुकान सारा, क्योंकि इतना सारा दुकान में था वो सब पार्टनर को दे दिया। तो बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को, हुआ रेल का राही। आप तार आपकी मुझे मिली, अलफ माना ब्रह्मा बाबा को मिली, अब हुआ रेल का राही और बे को बादशाही दे दी। अब घर वालों ने जब ये तार पढ़ी तो उनको समझ में नहीं आया क्या अर्थ है इसका, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। लेकिन लास्ट जो सेंटेंस है ना, आई तार अल्लाह को, हुआ रेल का राही, माना ट्रेन से आ रहा हूँ, ये लास्ट सेंटेंस उन्होंने समझी बस, बाकी कुछ नहीं समझा। उनको क्या पता कि ये बिजनेस वाइंड अप करके आ रहे हैं, तो आ रहा हूँ, तब उनको संतुष्टि हुई कि वापस आ रहे हैं। लेकिन जब बाबा वापस पहुँचे तो एकदम बदले हुए, एकदम बदले हुए, बिल्कुल न्यारे प्यारे। तो उनको हिम्मत नहीं पड़ी बच्चों को या पत्नी को या बेटे को कि कोई कुछ पार्टी भी करे। तो देखो तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना, जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अल्लाह को अल्लाह मिला तो बे यानी बागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था, बाबा का धंधा कोई कम नहीं था। राजाएं महाराजाएं उनके द्वार पर, उनके दुकान पर आते थे, अंग्रेज आते थे, क्वीन विक्टोरिया बताते हैं कि वो भी आई थी उनके पास, वो खरीदारी करके गई। निर्मल शांता दादी बताती थी ना कि कैसे वो आई थी और उसने बकल खरीदा था, तो वो बालों का बकल और उसमें म्यूजिक बजता था। तो जब वो गई लंदन निर्मल शांता दादी, तो वहाँ पर म्यूजियम है, जो भी भारत से जो चोरी करके गए या जो कुछ भी ले गए अंग्रेज लोग, तो वो सारा उनका म्यूजियम है ब्रिटिश में। वो म्यूजियम में वो सब चीज़ें रखी हुई है, सब दिखाते हैं, सब जाते हैं देखने के लिए म्यूजियम में। तो दादी ने देखा वो बकल वही है जो बाबा की दुकान से वो लेके गई थी। तो वहाँ जो केयर टेकर थे उनसे पूछा, ये बकल जो है ये क्वीन विक्टोरिया लेके गई थी हमारे पिता के दुकान से, और इसमें म्यूजिक बजता है, इसमें म्यूजिक बजता है। उसने बड़े नशे से कहा, तो कहा आपको कैसे पता? तो कहा हाँ, मेरे पिता के दुकान से लेके गई थी। तो देखो, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ गया, हो राजाई मिलती है, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को भागीदार को बादशाही, राजाई थी कम नहीं था, अच्छा अच्छा फर्टाइल धंधा था, बाबा का फर्टाइल धंधा था, क्योंकि राजाओं महाराजाओं से मिलने जाते थे। रानियां तो वो दो तो नहीं अपने महलों से निकल करके दुकान में आएगी, लेकिन बाबा जाते थे सेल्समैन की तरह, बाबा जाते थे उनके महलों में, तो बहुत बाबा को इतना रिस्पेक्ट देते थे, तो फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है, फर्टाइल धंधा था, मतलब राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था बाबा का। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो, पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। हाँ, मिंट होता है वो, जहाँ नोट तैयार नोट बनते हैं, तो कई नोट खराब होते हैं ना, वो ठीक नहीं बनते हैं, तो फिर वो निकाल देने पड़ते हैं, उसको जला देते हैं ताकि कोई यूज़ भी कर न सके। तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, राजाएं तो गिन्नी देते थे, हाँ सब सोने की गिन्नी चांदी की गिन्नियाँ वही चलती थी। अभी तो देखो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते, डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमिन भी होगा, अकाल भी पड़ेगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने ना भाई, कंगाल कैसे बने बताओ, बाबा को कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं वैकुंठ के झाड़ दिखाई, तो वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके इसके लिए महादानी बन, बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुद्ध शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी हो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। जो सोचते हैं जो बोलते हैं वो कर्म में जब लाते हैं तो वही सोच और बोल स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है, क्या है रूहानियत का अर्थ? नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे आज से नया शुरू हुआ है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अब ये सारा महीना इसी के आधार पर आएगा। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, सोलर एनर्जी कितना काम करती है, बिजली पैदा करती है, तो आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज से बट्टी शुरू हो रही है और अच्छा, सभी आबू निवासी भाई बहने अभी योग के बाद फल विभाग में पहुंचे। सभी आबू निवासी भाई बहने अभी योग के बाद फल विभाग में पहुंचे। और आप सब जानते हैं हमारे ज्ञान सरोवर में जो स्टूडियो बना है वो समय प्रति समय नई नई फिल्में बनाते हैं। तो अवेकनिंग चैनल पिछले 2 साल से ब्रह्मा बाबा और यज्ञ इतिहास के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो 2 साल से बना रहे हैं ये फिल्म। फिल्म का नाम है भाग्य विधाता। आज शाम ये फिल्म ज्ञान सरोवर हारमोनी हॉल में दिखाई जाएगी। 5:30 बजे से योग चलेगा, 5:45 बजे फिल्म शुरू होगी और 8 बजे पूरी होगी। ये 2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की फिल्म है भाग्य विधाता, जो आज ज्ञान सरोवर में दिखाई जाएगी। जो अपनी जिनको अपनी व्हीकल है, साधन है, वो जा सकते हैं। बाकी तो यहाँ भी एक दिन दिखाएंगे, देखते हैं ज़रूर। तो आज वहाँ दिखा रहे हैं, ये नई फिल्म भाग्य विधाता बनी है, वो अवेकनिंग चैनल वालों ने बनाई है। अच्छा, ओम शांति। और अभी भट्टी में जो आज आए हैं, आज से भट्टी शुरू हो रही है, जो भट्टी में आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े आए हैं। आप सभी योग के बाद बैठे रहना, आपको प्रोग्राम देंगे, यहीं बैठे रहना।